get out here.
Yeah, what are you?
ओम शांति,
शांति।
महाज्योति को याद करो। हे योगी, बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो। कहाँ? वतन में।
विश्व में परिक्रमा
लगाने। तो फरिश्ता अर्थात विश्व परिक्रमा लगाने वाले। फरिश्ता अर्थात जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जैसे वो गवर्नमेंट क्या लिख देती है कि रास्ता ब्लॉक है, वैसे सारे रास्ते ब्लॉक जब हो जाए तो फिर फरिश्ता बनेंगे। बुद्धि यहाँ वहां भटकना जब बंद हो जाए तब फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। और आज बाबा ने कितने सारे सामान दिए हैं, अनगिनत सामान दिए हैं। एक एक सामान पर एक एक लंबा क्लास, डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा हो सकती है। एक एक सामान पर तो 20 से ऊपर हमने गिने तो नहीं। तो हम सभी आत्माएं कौन है? मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर परमात्मा और
विश्व
कल्याणकारी, विश्व रचयिता, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे, त्रिनेत्री, जिनके पास तीसरा नेत्र है। ज्ञान के नेत्र से संसार को देखना संन्यास है, अज्ञान के नेत्र से देखना वो संसार कहा जाता है उसे। आत्मा जब अज्ञान के नेत्र से देखती है तो उसे संसार कहा जाता है, और आत्मा जब ज्ञान के नेत्र से देखती है तो उसे संन्यास कहा जाता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीन काल। आप बच्चे केवल वर्तमान को देखते हो और बाप दादा तीनों कालों को देखते हैं। इसके लिए यह क्यों, यह क्या, ये घबराहट उसमें नहीं है, हम में है। यह क्यों, यह क्या, इसके लिए घबराते हैं। तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर भगवान, मास्टर नॉलेजफुल। नॉलेजफुल की परिभाषा भी क्या दी है संजय भाई? बड़ी सूक्ष्म परिभाषा दी है नॉलेजफुल की बाबा ने, पहले ही दो तीन लाइन में कह दिया है। अर्थात सारे ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव स्वरूप बनना, अर्थात मास्टर नॉलेजफुल। ज्ञान नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी, नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान है। तो ज्ञान का संबंध केवल सूचनाओं से नहीं है, इंफॉर्मेशन से नहीं है, किससे है? अनुभव से है। हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभव स्वरूप, ज्ञान के पॉइंट के अनुभव स्वरूप, हर गुण के अनुभव स्वरूप, हर
शक्ति
के अनुभव स्वरूप, एक एक महावाक्य के अनुभव स्वरूप, वो भी एक सेकंड में। तो अनुभवी स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल। तो हम सब कौन है? मास्टर नॉलेजफुल है। और कौन है? समान याद करो सारे। दूरांदेशी है, जो बहुत दूर की सोचते हैं, तीनों कालों का को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं, ये किया तो क्या होगा, दूरगामी दृष्टि है जिनों की। तो हम दूरांदेशी है। ऑल माइटी ऑथोरिटी है, वो जो संसार के लोग हैं उनके पास थोड़ी बहुत ऑथोरिटी है और कितना उनमें आत्मविश्वास है, और तुम्हारे पास वर्ल्ड ऑल माइटी ऑथोरिटी है, इतनी बड़ी ऑथोरिटी। एक मुरली में गिनाए थे ना बाबा ने, तुम्हारे पास कितनी सारी ऑथोरिटी है। तो तुम्हारे पास वर्ल्ड ऑल माइटी ऑथोरिटी है, और सर्वगुण संपन्न, सर्व प्राप्ति के खजाने से संपन्न के मालिकपन का नशा, इतनी ऊंची स्टेज। तो सर्व प्राप्तियों के मालिकपन और मास्टर
सुदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती
सुदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती रहम दिल दाता महादानी महाज्ञानी और महाशक्ति स्वरूप वरदानी मूर्त एक सेकंड के दृष्टि के विधाता सेकंड के दृष्टि विधाता सेकंड के दृष्टि विधाता और इष्ट देव और लाइट हाउस हो या लाइट सर्च लाइट हो या लाइट हाउस हो एक मुरली में बाबा ने कहा बल्ब हो जीरो वाला बल्ब हो या बल्ब हो फिर ट्यूबलाइट हो या स्पॉटलाइट हो स्पॉटलाइट पता है ना जब फोटो निकालते हैं ना
जो पीछे
पासपोर्ट वाला वो इधर से लाइट फिर होता है एक सर्च लाइट थोड़ा बड़ा फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है तो बड़ा लाइट दिखाते हैं ना फोकस या ऑर्केस्ट्रा में या स्टेज पर वो सर्च लाइट और एक तीसरा होता है सबसे बड़ा वो है लाइट हाउस वो होता है समुन्दर में कहाँ टापू वगैरह होगा तो वहां पर होगा वो कंटिन्यूस वहां पर लोग रहते भी एक दो ड्यूटी लगी रहती है वहां पर लाइट हाउस तो बाबा हम सब कौन है लाइट हाउस बाबा ने पूछा है लाइट हाउस हो या सर्च लाइट हो तो ये भी एक समान है कि मैं लाइट हाउस हूँ और मुरली से समान बहुत सारे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी और विश्व सेवाधारी मुरली के शब्दों से सर्व आत्माओं को ठिकाना देने वाले जैसे ये मक्खी को सोचते हो ठिकाने देने का वैसे ही सर्व आत्माओं को तीव्र संकल्प चलता है सर्व आत्माओं को ठिकाना देने का और समान कौन से है सारे मुरली के समान हो गए इष्टदेव हो क्या और विशाल बुद्धि दुरानदेशी विशाल बुद्धि ऊंची स्टेज पर रहने वाले अब उधर आ जाओ थोड़ा मुरली को छोड़कर पार्टियों में
रास करने वाले
कौन सी संस्कार मिलन की रास करने वाले
निमित्त
आत्माएं महान आत्माएं निमित्त आत्माएं और कर्मातीत स्टेज में रहने वाले अमृत वेले विश्व की परिक्रमा लगाने वाले प्रेम स्वरूप नॉलेजफुल स्वरूप रूरियान करने वाले फरिश्ता स्वरूप कर्मातीत स्वरूप रूरियान और परिक्रमा करने वाले प्रेम स्वरूप नॉलेजफुल स्वरूप ये भी हमारे सारे समान है और टीचर आप समान बनाने वाले टीचर एक एक टीचर नंबर वन टीचर किसको कहा जो चक्र लगाते हैं और नंबर वन टीचर कौन है हाँ अनेक संभालने वाले बाबा की जो आश है इन एडवांस जो उच्चारे हुए महावाक्य है वो प्रैक्टिकल में लाने वाले तो एक एक नंबर वन टीचर है और कौन से समान है आज की मुरली से दिल तख्त नशीन चलो वो देखता है संगम युग की विशेषता है कि यहाँ बाप दादा देखते हैं यही परंपरा फिर सतयुग में भी चलती है वहां पर भी बाप देखते हैं कलयुग में तो ऐसा है नहीं यहाँ पर बाबा देखते हैं तख्त पर बैठकर सेवा के तख्त पर बैठकर कैसी कैसे चल रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो हम तख्त पर बैठने वाले सेवा के तख्त पर ले लो दिल तख्त तो है ही पर सेवा के तख्त पर बैठने वाले और ठोकर खाकर ठाकुर बनने वाले बाबा क्या देखते हैं ठोकर नहीं देखते ठाकुर देखते हैं जैसे छोटा बच्चा अगर कोई वस्तु वो गिर जाए तो उसको क्या कहते हैं अरे देखो देखो ये क्या है तो उसका हाँ क्या मिला रोहित बाबा ने जो भाषा जो यूज की है फिर उसको कहते हैं कि टॉपिक ही चेंज कर देते हैं इस तरह से क्या मिला तो वैसे और तो मुरली की शुरुआत से लेके अंत तक बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान बाबा ने दिए हुए हैं। एक एक सम्मान में स्थित होना या एक भिन्न भिन्न सम्मान में एक ही दिन में अलग अलग सम्मान में लेते रहना, यह अभ्यास है। अमृत वेले से शुरुआत की है बाबा ने। तो आज कौन किसको देख रहा है मुरली में? नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देख रहा है, हर्षित हो रहा है। किसको देखकर हर्षित हो रहे? मास्टर नॉलेजफुल, जो उसके समान बन गए, जितना ज्ञान उसमें उतना ही ज्ञान इनमें भी। तो मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देख बाप दादा नॉलेजफुल बाप हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं नॉलेज में? अच्छी तरह से रमन कर रहे हैं। रमन अर्थात रमन करना, कई अर्थ है रमन के। एक होता है खुश रहना, एक होता है विचरण करना, जैसे देवता है रमन करते हैं, चलना, रमन करना, भ्रमण करना, विहार करना, ये सब महा। फिर एक ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है उसमें मगन रहना, जैसे लॉस्ट एंग्रॉस्ड, किसी एक खोया हुआ किसी एक बात में। तो ज्ञान में क्या कर रहे हैं? रमन कर रहे हैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। और अनुभव क्या कर रहे? यथाशक्ति, यथा योग, नंबर वार नॉलेज का अनुभव कर रहे हैं। तो एक है ज्ञान का अनुभव, फिर बाबा ने यहीं पर बता दिया कि नॉलेजफुल अर्थात की परिभाषा एक एक पॉइंट का अनुभवी स्वरूप, यथाशक्ति, जैसी जिसकी शक्ति है उस अनुसार मिलन मना रहे। तो अनुभवी स्वरूप सारा जो लक्ष्य है अनुभव का है, और अनुभव एक सेकंड में भी हो सकता है। हर एक के जीवन में ऐसा कोई अनुभव एक है कि जो अनुभव केवल एक सेकंड में हुआ है, और परंतु उसकी स्मृति अब तक है। उसके बाद न जाने कितने अमृत वेले किए, शक्तिशाली किए, परंतु वो जो अनुभव था एक सेकंड वाला 10 साल पहले का, एक ही सेकंड का था वो अभी भी जैसे कि मतलब पता नहीं कैसा छाप लगी हुई है उसकी, इतना जबरदस्त छाप लगी है। शायद वो अनुभव किसी गीत से जुड़ा हो सकता है कि एक गीत बजा था 15 साल पहले और हम बैठे और बस ऐसा स्टैंप लग गया है उसका कि उसके बाद पता नहीं कितने सारे गीत सुने, कितनी योग की अवस्थाएं, कितनी भट्टिया की, परंतु वो वही है।
जिस स्थान पर होता है अनुभव लोग फिर उसी स्थान पर जाते हैं करने के लिए।
हाँ जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर जाते हैं अनुभव करने के लिए। तो अनुभव लक्ष्य रखना है, केवल ज्ञान को रटना नहीं है, ज्ञान को रटना नहीं है, पढ़ना जरूर है, बार बार बुद्धि में रखना जरूर है, वो भी जरूरी है, परंतु रमन करना है उसमें, उसको इंटरेस्टिंग बना देना है, इतना इंटरेस्टिंग बता देना रोचक, क्योंकि नहीं तो माया बहुत होशियार है, माया के जो संसाधन है वो खींच लेंगे अपनी तरफ। ज्ञान जो है वो निरस ना हो, जंगल की तरह ना लगे कि भटक गए, जिसमें रेगिस्तान ना हो, हरियाली हो, तो उसको रमणीक बना देना, इंटरेस्टिंग बना देना, चर्चा का विषय बना देना, उसमें रमन करना। तो ज्ञान अर्थात अनुभवी, ज्ञानी अर्थात अनुभवी स्वरूप, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल अर्थात अनुभवी स्वरूप। तो यहाँ फिर बाबा ने क्या कहा आगे? एक सेकंड में इस स्टेट में स्थित हो सकते हो या हो गए हो या हुए हो, कौन सी स्टेज में? फिर सारी समान गिनाए, ऑलमाइटी अथॉरिटी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, दुरानदेशी, सर्वगुण प्राप्ति संपन्न, मालिकपन, ये सारी स्टेज में किसके साथ? बाप दादा के साथ स्थित हो जाओ, ऊंची स्टेज में स्थित हो जाओ और नजर दौड़ाओ, नीचे देखो, रहम संकल्प की दृष्टि से देखो, सभी आत्माओं को देखो। कितनी सारी बातें बोली है, जो लास्ट में जो बोला है ना, अमृत वेले भिन्न भिन्न अनुभव करो, उससे क्या हो जाएगा? एक तो अनुभव बढ़ेगा और दूसरा आलस्य और थकावट नहीं होगी। हर दिन नया नया अनुभव, कभी कर्मातीत तो कभी फरिश्ता, कभी विश्व की सूक्ष्म सेवाधारी बनकर परिक्रमा लगा रहे, कभी त्रिनेत्री स्वरूप से संसार को देखना, त्रिकालदर्शी स्वरूप से संसार को देखना, मास्टर नॉलेजफुल के स्वरूप से संसार को देखना, भिन्न 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 स्वरूप से संसार को देखना, ऊंची स्टेज पे स्थित होकर देखना। तो नीचे क्या देखेगा?
भगत देखेंगे,
बहुत सारे दिखेंगे हमको। पांच कैटेगरीज बाबा ने बताई है, कौन कौन सी कमलेश भाई? पहले भक्त दिखेंगे, दूसरे धर्म। क्या धर्म में भक्त नहीं आते? फिर उनको अलग श्रेणी में क्यों रखा गया है?
विशेष।
तो दूसरा कैटेगरी धर्म की आत्मा है, तीसरी कैटेगरी राजनेता वैज्ञानिक, चौथी कैटेगरी राजनेता, पांचवी कैटेगरी जनरल पब्लिक, जनता जनार्दन, आम आदमी पार्टी आप तो पांचवा है आम आदमी पार्टी। चलो हम आम आदमी पार्टी से चालू करते हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है राजेश भाई? इसमें वैरायटी ग्रुप है बाबा ने कहा, वैरायटी प्रकार है इसमें। चाहिए चाहिए का क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। क्या चाहिए? कुछ भी चाहिए तृप्ति, अतृप्त है सभी आत्माएं, बस यहाँ चाहिए चाहिए का गीत गा रहे हैं और कंटिन्यूअस गीत गा रहे हैं। ये चाहिए 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 मांग है, चाहिए। ये फासला कभी कम नहीं होता है, पर व्यक्ति जन्मता है उसको चाहिए रहता है, वो चाहिए चाहिए चाहिए, यहाँ मृत्यु है यहाँ जन्म है, ये फासला कभी कम नहीं होता है। अतृप्ति निरंतर बनी ही रहती है चाहे कितना भी भोगो। ये भोगों का स्वभाव ऐसा है कि भोगने के बाद भी अतृप्त ही रहती है आत्मा,
चाहिए
कुछ भी हो जाए उसको तृप्ति होती ही नहीं है, कभी तृप्त होती ही नहीं है आत्मा। ऐसा उनका स्वभाव, उनकी फितरत में ही ऐसा है अतृप्ति, भोग के जो स्वभाव ही वो है। तो संसार की आत्माएं, वैरायटी आत्माएं है यहाँ पर आम आदमी पार्टी में, और यहाँ पर चाहिए चाहिए कहता। और तुम्हारा कर्तव्य क्या है फिर? तुम गायक हो, कौन सा गीत गाओ? तो उनका गीत समाप्त हो जाए, वो तो बोला ही नहीं बाबा ने, गीत कौन सा गाओ? ऐसा गीत गाओ कि उनके गीत समाप्त हो जाए। वो भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गा रहे, तो हम कौन सा गीत गाएंगे? पाना था सो पा लिया, और ये कोई स्थूल गीत गाने की भी बात नहीं है, अनुभव की बात है, जीवन की बात है। जीवन ही गीत बन गया है, ऐसा गीत गाए जो उनके ये चाहिए चाहिए के गीत समाप्त हो जाए। वो ये अनुभव करे फिर कि हम कौन है, महाज्ञानी, महादानी, वरदानी मूर्त, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, ये वो अनुभव करे आत्माएं। तो ये सबसे ग्रुप था, एक ग्रुप तो ये था। इस मुरली में एक बहुत हम एक चिंतन का एकदम भिन्न विषय है जो हम ये पांच ग्रुप होने के बाद चिंतन बताएंगे, एकदम ही भिन्न चिंतन का एक बिंदु है यहाँ पर। दूसरा, तू पहले नंबर का ग्रुप भक्त आत्मा है, क्या कर रही है? चिल्ला रही है, ढूंढ रही है और पुकार रही है। कौन कौन सी चिल्लाहट? नौ प्रकार की। अरविंद भाई,
महंगाई,
टैक्स,
भूख, प्यास,
भूख, बच्चों की पढ़ाई का बोझ, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुर्सी छीन जाने का डर, बड़े अधिकारियों को एक दूसरे से भयभीत का चिल्लाना, शरीर की बीमारी, मन की अशांति, वो हो गया। राजनीति के दो पॉइंट हो गए, और पारिवारिक समस्या है, घर की समस्या है, हाँ, मन की अशांति, शरीर के रोग। पिछले संडे की मुरली हम चर्चा कर रहे हैं अभी, दो संडे पहले की, कि जिसमें अलग अलग प्रकार का चिल्लाना था, तो ये नौ प्रकार का चिल्लाना है आत्माओं का। तो आत्माएं चिल्ला रही है, उनको ठिकाना चाहिए, जैसे इस मक्खी को भी ठिकाना चाहिए। तो ये भक्त क्या कर रहे हैं? अनगिनत भक्त है, अलग अलग प्रकार के भक्त है। कौन कौन से प्रकार के भक्त है? एक है सतो प्रधान भक्त, जो कैसे है, सतोगुणी भक्त, बहुत भावना प्रधान भक्त है। दूसरे भक्त है रजो, तीसरे है तमो, वो दोनों कैसे हैं? स्वार्थ वाले हैं। एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। सकाम अर्थात कामनाएं हैं जिसमें, निष्काम अर्थात कोई कामनाएं। एक है वैधि भक्ति और दूसरी है पराभक्ति। पराभक्ति अर्थात जिसमें एकदम ये सब छूट गया है, ऊपर की भक्ति है, थोड़ी ऊंची भक्ति है वो। और वैधि भक्ति जो है वो जिसमें कर्मकांड है सारे, पूजा आराधना ये अलग अलग प्रकार की। और भी पांच प्रकार की भक्ति है, दास्य भक्ति दास समझना, सखा भक्ति मित्र समझना, शांत भक्ति वो मालिक है हम सब उसकी संतान है। पराभक्ति बहुत ऊंची भक्ति है जिसमें कुछ भी कर्मकांड नहीं होता है परंतु केवल उसकी याद रहती है बस। जैसे मीरा, चैतन्य महाप्रभु, ये जो है इनकी पराभक्ति है, सर्वोच्च भक्ति, रति भक्ति जिसको कहते हैं, अति उच्च सुप्रीम डिवोशन। बाकी जो है वो सेरेमोनियल्स है जिसमें कर्मकांड है सारे। फिर पांच में मधुरा भक्ति, भगवान को अपना साथी नहीं पति समझना, तो वो एक है मधुरा भक्ति। दास्य भक्ति, सखा भक्ति, वात्सल्य भक्ति, उसको अपना पुत्र समझना, यशोदा और कृष्ण। तो इस तरह से पांच, नौ प्रकार की। वो दूसरी नवदा भक्ति वो अलग, जो बाबा हमेशा गाते हैं, श्रवण कीर्तन मनन, हमने कई बार चर्चा की है जिसकी। तो इसकी अलग अलग प्रकार के ये भक्त है। तो परंतु आ जाते किसके पास है? इष्ट देव के पास। तो इष्ट देव को उनकी पुकार सुनाई देती है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, अगर हम इष्ट देव है तो हमारे सामने इतने सारे भक्त है। पिछले संडे भी बोला था ना, हनुमान और पिछले संडे के पिछले संडे हनुमान और वैष्णो देवी, लाइन तो बढ़ती जा रही है, लगी तो है परंतु बढ़ती जा रही है उनकी लाइन। तो उन सबको संतुष्ट करना है। भक्तों के लिए हमें क्या क्या करना है अब ये प्रश्न है। उनकी कामनाएं पूर्ण करनी है, एक उनको पहले सुनना है तब तो कामना पूर्ण कर सकेंगे। और उनकी उनकी बातें भी ऐसी होती है कि हमको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी सुनने की। जैसे कल की मुरली में था ना, बाप से बच्चे कहते हैं कि ये ठीक कर दो वो खुद, पर मैं ये करने थोड़ी आया हूँ, किसी की बीमारी ठीक करने थोड़ी आया हूँ मैं, तुम्हारी खांसी ठीक करने थोड़ी आया हूँ, तुम्हारी बीमार तुम्हारे धंधे में जो नुकसान हुआ वो ठीक करने, पर हमको ये सब सुनना पड़ेगा। हमारे पास लोग क्या सुख शांति के लिए तो आएंगे पर ये सब चीजों के लिए भी आएंगे। तो उस पहले तो उनको सुनना,
उससे पहले भरपूर करना।
हाँ, जैसे परसों का वरदान था ना, देने के लिए स्वयं भरपूर रहना चाहिए तो ही दे सकेंगे, नहीं तो महादानी तब तक नहीं बनेंगे। उदार चित चाहिए महादानी बनने के लिए, स्वयं ज्ञान के खजाने से भरपूर चाहिए, जो भरपूर है वही दे सकेगा। तो पहले स्वयं को भरपूर करना, फिर उनको सुनना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और भक्तों के लिए क्या क्या करना है हमें? लक्ष्मी नारायण भाई, उनको दृष्टि देना, उनका कल्याण करना, कणादाना देना, अंजलि देना और साक्षात्कार कराना। हमें उन्हें साक्षात्कार कराना है, जिसके वो भक्त है उसको उनका साक्षात्कार कराना है। हनुमान के भक्त को हनुमान का ही साक्षात्कार कराना, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं होगा। जब तक उसके सामने हनुमान ना आ जाए, शिव बाबा भी आ जाए तो अशोक भाई क्या कहेंगे, हटाओ ये कौन आए ये बिंदु, हमें तो अपना हनुमान चाहिए बस, ये शिव बाबा नहीं चाहिए उन्हें। जो जिसका भक्त है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति या तिना देख ही तैसी, उनको वैसा ही चाहिए और वैसे ही दिखेगा। बाकी और कोई आया तो उन्हें पसंद नहीं है। तो भक्त को साक्षात्कार कराना, भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करना, भक्तों को संतुष्ट करना।
तो टाइम तो मल्टी इष्टदेव का टाइम पड़ेगा।
हाँ, मल्टी इष्ट देव स्वरूप धारण। क्या कर दिया? साक्षात्कार कराया था। हाँ, तो अभी हमें भक्तों को साक्षात्कार कराना है। हाँ, विष्णु का, तो आपको भी अभी विष्णु का साक्षात्कार कराना पड़ेगा। मैं विष्णु स्वरूप हूँ, ठीक है ना? नहीं, हम नहीं कराएंगे विनाश का, हम उनको अपने उनके हम उन्हें उनका जो जिसमें जिसकी भावना है उसका हम साक्षात्कार कराएंगे। फिर उनमें दिव्यता भरना है, वो जितने हमारे देवियों के रूप है ना, हनुमान है तो ब्रह्मचर्य में किसी को स्थित कर देना है, शक्ति रूप बना देना किसी को, वैष्णो देवी है, शीतला है तो शीतल कर देना, शांत कर देना, उमा है तो उमंग भर देना, संतोषी माँ के रूप में संतुष्ट कर देना, विकराल रूप काली का रूप धारण करके उन विकारों को भस्म करना,
भद्रकाली
वही है उसके रूप है। फिर उसके बाद में लक्ष्मी बनकर उनको धन से संपन्न करना है, सरस्वती बनकर उनके विद्या दान करना है। कितने सारे कर्तव्य है हमारे, ये सब हमारे रूप है। विघ्न विनाशक गणेश बनकर उनके विघ्नों को दूर करना है। संकट मोचन हनुमान भी हम ही है। तो ये सारे स्वरूप अमृत वेले याद करना है, एक बार तो याद ही करना है कि ये सब मैं हूं और मेरे सामने असंख्य आत्माएं हैं, असंख्य आत्मा, एक एक आत्मा आ रही है। एक घंटा तो ऐसे ही आराम से निकल जाएगा, एक एक को वरदान देते देते। किसी के सर पे हाथ रख दो, किसी को तिलक दे दो,
तो भाई मेडिटेशन आ रहा है सब किसी पर।
कभी कुछ किए नहीं तो केवल फूल ही गिरा दो, वो होता है ना मूर्ति में फूल गिर जाता है, वो ऐसे नीचे किया फूल तो उसको लगता है हाँ सुन लिया। कुछ किया नहीं, खाली फूल ऐसे हाथ करके नीचे गिरा देना तो उसकी भी मनोकामना, वो भी खुश हो जाएगा उतने में। कोई कोई भक्त उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी थी भक्त की, दूसरी कैटेगरी है अभी धर्म का बाजार लगा हुआ है संसार में, बहुत रौनक है इस बाजार में, बड़ा बाजार है, रौनक वाला बाजार है। इसमें भिन्न भिन्न भांति भांति की थ्योरी है, कोई लाल थ्योरी, कोई पीली थ्योरी, कितनी सारी थ्योरी है। हर एक का अपना अपना क्या है, एक शोकेस में एक एक के क्या है, शोपीस है। ऐसी आत्मा हर एक का नाम रूप रंग अलग अलग है, वेश कर्म और आकर्षण करने वाले साधन सबके अलग अलग है। कितने स्पिरिचुअल बाजार पूरा है बाहर बैठा, इसको अगर बाहर रखे तो कितने सारी संस्थाएं आज संसार में, और जिस भी संस्थाओं में जाओगे तो कहेंगे बस यही है फाइनल, यही है लास्ट ठिकाना, यही है लास्ट हट्टी। ये देखो हमारे पास भी ये भाई पहले 20 साल सन्यासी था, इतना भटका, अब यहाँ आया तब शांति प्राप्त हुई। ये देखो ये दूसरा इतनी भक्ति की, अभी हमारे पास आया तो इसे शांति प्राप्त हुई। हाँ ऐसे संसार में ऐसे कितने ही है, जहाँ जाओ वो कहेंगे बस यही फाइनल है। हाँ हर जगह, चाहे भक्ति में ही चले जाओ तो इतना बाजार है। वैसे तो भारत में अगर देखा जाए तो षड़ दर्शन है, 6 फिलोसॉफीज जो मुख्य जो है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, ये 6 मुख्य दर्शन है भारत के, जो आस्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन में जैन बौद्ध और चरवाक, बाबा ने आज चरवाक फिलोसॉफी को याद किया यहाँ, चरवाक सिद्धांत। चरवाक सिद्धांत कहता है खाओ पियो और मौज करो, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है भारत में, इपिक्यूरियन जिसको अभी कहते हैं, जो तब से चालू आया, जिसने उसमें बहुत तर्क से ये सब लिखा हुआ है। जीवन किसने देखा है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, बस अभी का ही जीवन है, लिव इन द प्रेजेंट। इसके लिए खाना पीना मौज करना ये सब तो आत्मा तो दिखती नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं है, बहुत तर्क दिए इस बारे में, इसको चरवाक फिलोसॉफी कहा जाता है। तो चरवाक का ये सिद्धांत है जो कि नास्तिक सिद्धांत है, जैसे जैन और बौद्ध भी नास्तिक सिद्धांत है, उसमें चरवाक भी एक सिद्धांत है। ये 3 और वो 6, ये तो तब की बात है, अभी तो बात मत पूछो, इतने सारे धर्म के बाजार है, इतने सारे है कि हर एक का एक एक अपनी अपनी। कोई क्रिया योग तो वो आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया, कितने सारे है, वो माता अमृतानंदमयी वो नीचे है, पतंजलि योग, सहज योग, निर्मला देवी, कितने सारे है,
निर्मल देवी।
एक निर्मल बाबा भी है, वो दूसरा सहज योग, वो दूसरा कुंडलिनी जागरण, वो दूसरा, वो निर्मल बाबा का तो वो तो बहुत ही है, जिसमें आप देखोगे तो दया आएगी, भक्त ऐसे गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने कि ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, और वो उत्तर भी ऐसे अद्भुत देता है। अच्छा दूध कौन सा पीते हो, गाय भैंस का पियो, बस उत्तर मिल गया, समोसा खा लो। और लोग उनके पास जाते भी है, मतलब ऐसा बाजार लगा हुआ है, क्या कहे अभी इसको। हाँ ऐसे बहुत है, बहुत कुछ कुछ अच्छे भी है उसमें। और लोग उनके पास जाते भी है और थोड़ी बहुत शांति तो मिलती है, क्योंकि संसारिकता थोड़े से थोड़ा बाहर निकलते हैं, अपनी भावना बैठ जाती है, तो जिसमें भावना बैठती है वो चाहे फिर कुछ भी कहे वो राइट है। हाँ इसमें किसी का बाजार बहुत गर्म है तो किसी का ठंडा हो गया है, वो चल रहा है अभी, राधे राधा माँ। तो ये तो एक अलग प्रकार की फिलोसॉफी हो गई। ये संसार में कुछ जो पावरफुल फिलोसॉफीज है, जैसे ट्रांसेंडेंटल योग, महेश योगी, ये एक अलग प्रकार की है। फिर दूसरा है आर्ट ऑफ लिविंग, ये अलग प्रकार का है। तीसरा है ये योगादा सत्संग सोसाइटी स्वामी योगानंद का, रांची में जो है, क्रिया योग, वो एक अलग प्रकार का है अपना। ये कुछ है जिड्डू कृष्णमूर्ति, ओशो, ये एक अलग प्रकार की जिसमें बहुत गहरे सिद्धांत है। लेविटेशन वो सिद्धियां है, ये तो भक्ति में। फिर जो कुंभ मेले में जो दिखते हैं इतना सारा, सन्यासियों के कितने प्रकार है। आज बाबा ने दो प्रकार की बात कही है, एक तो वो जो भोगते हैं और दूसरा सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं। वो भी भटक रहे, वो भी भटक रहे, एक भोगी दूसरा त्यागी, वो उसी का शीर्षासन है त्यागी। एक भोग कर रहा है तो दूसरा त्याग कर रहा है, पर बुद्धि ने दोनों के संसार ही है, एक संसार के विरोध में खड़ा है, एक संसार में है, एक संसार के विरोध में है, लगभग एक ही अवस्था में है दोनों। तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार की थ्योरी, किसी की लाल किसी की पीली। वंडरफुल दृश्य है, क्या कहा, वंडरफुल दृश्य है ये धर्म की आत्माओं का। परंतु अभी हे मास्टर नॉलेजफुल, इनका कल्याण का कोई संकल्प आता है, सोच चलता है, हे धर्म सर्व धर्म की आत्मा। यहां पर बाबा ने मास्टर परमात्मा का सम्मान दिया है, बाकी जगह नहीं दिया, यहां दिया। ये धर्म की आत्मा है, इसके लिए इनके लिए हम कौन है, मास्टर परमात्मा, विश्व कल्याणकारी। इनके कल्याण का संकल्प आता है, बहुत नशा है इस टाइटल में, पर उतना नशे के लिए उतनी अंदर पावर भी चाहिए। इतनी धारणाएं भी चाहिए, तो ये सम्मान लिया। कोई भी सम्मान नहीं ले सकते हम, पहले ये बाप सम्मान, मास्टर भगवान, मास्टर गॉड, ये जो सम्मान है बहुत ऊंचे सम्मान है। बहुत नशा है इन सम्मान में। तो ये सारी धर्म की जो आत्माएं हैं, इन सब का हमें कल्याण करना है, क्योंकि सभी के सभी भटक रही है। कल्याण की दृष्टि देनी है उन्हें, एक संकल्प की नजर, क्या कहा, संकल्प की नजर, संकल्प की नजर डालो इनके ऊपर, चारों ओर देखो, संकल्प की नजर डालो, क्योंकि ऐसे आत्माओं का हाल है। तो ये थी सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी अच्छी कैटेगरी है थोड़ी, थर्ड कौन सी, वैज्ञानिक विज्ञानी आत्माएं। कितनी मेहनत, कितना दिमाग, कितना त्याग इन आत्माओं का, इन्हीं के कारण तो ये माइक भी इधर है। बाबा कह रहे हैं आप सुन सक रहे हो इनके सहयोग से। अभी भी सहयोग करते हैं तो भविष्य में भी तुम्हारे सहयोगी बनेंगे वो, ऐसे समझ के मत छोड़ दो ये तो नास्तिक है। है तो भाई ब्रदरहुड की फीलिंग यहाँ पर भी लाओ, उनको वो भी अधिकारी है, वर्षे के अधिकारी है, हरेक के वर्षे के अधिकार लेने की विधि अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है हरेक का। तो ये इनको ये समझ के नहीं छोड़ दो कि ये नास्तिक है। वास्तव में देखा जाए तो संसार का ज्यादा नुकसान आस्तिकों ने किया है, नास्तिकों से ज्यादा। जितने लड़ाइयां संसार में हुई है वो नास्तिक ने कभी नहीं किए। जितने मंदिर मस्जिद जले हैं किसने जलाए, आस्तिकों ने जलाए। जितने युद्ध हुए संसार में किसके वजह से युद्ध हुए, ये जो धर्म के लोग हैं उन्हीं ने ज्यादा युद्ध किए। नास्तिक तो बेचारे इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो झगड़े हुए हैं संसार में, कहते हैं कि 2500 साल में लगभग, पिछले 2500 साल में लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं। 15,000 युद्ध मतलब बड़े बड़े युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, छोटे नहीं, छोटे तो पता नहीं कितने होंगे। किसी ने अनुमान लगाया है कि इसमें से लगभग केवल 300 वर्ष ही ऐसे है 2500 साल में जब युद्ध नहीं हुए, पर वो 300 वर्ष भी इकट्ठा नहीं, कभी 10 दिन कभी 15 दिन शांति थी, पर वो भी झूठी शांति, शांति उसको नहीं कह सकते। तो संसार को ये जो द्वापर से अब तक का समय दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो जो युद्ध का समय, दूसरा युद्ध की तैयारी का समय। तो इस धरती पर हर समय कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा था, और कौन ज्यादा जिम्मेवार है, ये तथा कथित सो कॉल्ड धार्मिक, उन्होंने ही सारे युद्ध ज्यादा किए हैं। कोई ईसाई तो कोई बौद्ध, कोई क्रिश्चियन तो कोई कुछ तो कोई कुछ, हर एक कहता है कि हमारी जो किताब है यही बस फाइनल है, ये डायरेक्ट परमात्मा की ली। वेद अपौरुषीय है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे है, अपौरुषीय, पुरुष के जरा किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं है, प्रकट हुए है वो तो। हिंदू मानता है वो प्रकट हुए है सारे वेद, वो मानते हैं कुरान तो डायरेक्ट डायरेक्ट अल्लाह का है, निजा ये हुआ है वहां से, तो
प्रकट कहां से
हुआ? डायरेक्ट ऊपर से, किसी मनुष्य का नहीं है। बहुत सारे ऐसे, हर धर्म का ले लो आप तो हर एक ये सोचता है कि मैं ही बस सब कुछ हूँ, ये हमारा धर्म ही सब कुछ है, बस यहाँ आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो गए। बस जीसस क्राइस्ट की शरण में अगर नहीं आए तो बस जन्म जन्म के लिए नरक में, बस ये एक ही मात्र मार्ग है, आई एम द वे द लाइफ एंड ट्रुथ, मैं ही सब कुछ हूँ, आ जाओ यहाँ। तो ये धर्म की आत्मा है। फिर चौथा
राजनीति,
कौन सा समय चल रहा है? 1981 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उसके पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, वो जो चालू ही था तब तक, अमृतसर सारे वो जो थे वो उसमें, तो इंदिरा गांधी ने सबको बाहर निकाला और फिर उसी के दोनों ने उसको 84 में किया। परंतु उसकी जो तैयारी है, राजनीतिक हलचल तभी से थोड़ी चालू हो चुकी थी। बाबा पूछ रहे हैं कि देश और विदेश के राजनीति के बारे में, अधिकारियों के बारे में, अचल है या हलचल में है? तो वो उसके दो बॉडीगार्ड ने उसे सिख मार दिया था और उसके बाद में सारे देश में अगले तीन दिन कत्लेआम 84 का जो दंगा फसाद हुआ था, कितने सिखों को उसमें मार दिया था, स्वर्ण मंदिर का अटैक, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो भी एक स्पीच जो दिया था ना, व्हेन अ ग्रेट ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स, राजीव गांधी जी ने एक स्पीच दिया था उस समय। उसके बाद में बहुत हंगामे हुए कि जब बहुत बड़ा झाड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बस ये इसको पकड़ा लोगों ने और बहुत हंगामा किया था तब। तो राजनीति में हलचल है अभी। ये लोग ने, बाबा ने क्या कहा, कौन सा खेल को याद किया?
चौपड़।
एक है बुद्धिबल, द्युत कीड़ा, ये जो है ना, ये एक है चेस। इन दोनों में क्या अंतर है?
चेस में तो घोड़े होते हैं,
चेस में ये दिमाग का ज्यादा काम होता है, इसमें ये होते हैं पासे होते हैं, जैसे शकुनी मामा वो दिखाते हैं ना महाभारत का, भांजे कितने चाहिए बोल, छह तो ये लो छह, तो वो जो है ना वो चौपट ऐसे ऐसे बिछाया जाता है वो, हाँ वो है चौपट। पर एक बात जो कही है, बाबा को भी, बाबा का फेवरेट गेम था बोला है एक तो चेस होता है, चेस दूसरा है, उसमें ये नहीं होते पासे नहीं होते तो यहाँ पर पौ बारह, और कभी पौ बारह तो कभी इतना हार हो जाती है कि खाने को भी, घर का पालना भी नहीं कर सकते, परिवार की भी पालना नहीं कर सकते, कभी पौ बारह और कभी तो बेताज बादशाह और कभी वोट के भिखारी। तो इनकी स्थिति कैसी है? किसके भिखारी है? नाम और शान के भिखारी है ये, नाम और शान के भिखारी है ये। ऐसी तृप्त न होने वाली इच्छा है ये, नाम की कामना। कोई कितना भी नाम हो जाए तो उसको लगता है और थोड़ा नाम बढ़ जाए, और थोड़ा, कभी भी तृप्त नहीं होती ये कामना। तो ये थी कौन? चौथे प्रकार की आत्मा है। अभी पांचवे प्रकार की आत्मा हमने बोल दिया, जनरल पब्लिक। अभी ये सारों का क्या करो? पांचों का नजर दौड़ाओ, नजर घुमाओ, परिक्रमा लगाओ, चक्रवर्ती स्वदर्शन चक्र, इनका कल्याण करो, अंचली दो, कना दाना दो, अधिक वर्षे के अधिकारी बनाओ, इन सबको। दूसरा मेरा एक चिंतन आज चल रहा था कि ये जो पांच प्रकार की आत्माएं हैं जो बाबा ने कही, ये ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी ही पांच प्रकार की आत्माएं हैं। वो छोड़ दो अभी, बाहर का बाहर रखो, अभी इधर आ जाओ। इसी ब्राह्मण परिवार में अभी हम पांच प्रकार की आत्माएं निकालेंगे। सबसे पहले भक्त, जो ब्राह्मण तो बने पर चिल्ला रहे और ढूंढ रहे और पुकार रहे और मांग रहे, जो शिव बाबा की सूक्ष्म भक्ति करते हैं, जैसे शिव बाबा के भगत, जो बाप को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, परंतु अभी शिव बाबा की किस तरीके से भक्ति करते हैं कि बाबा
शक्ति दो,
ये कर दो, शक्ति दे दो, और क्या करते हैं? हाँ हाँ, ये भी, ये ज्ञान में नहीं है, इनकी बुद्धि का ताला खोलो, ये भी ज्ञान में आ जाए, और बीमारी ठीक कर दो, फिर मैं बहुत सेवा करूंगा। और क्या मांगते हैं शिव बाबा से? हाँ, धंधे में नुकसान हो रहा है, क्या करूँ, कौन सा धंधा करूँ, बेटी कह रही है शादी करनी है, उसको कराऊं कि नहीं कराऊं उसकी शादी कोई अच्छा कोई कुमार ढूंढ दो आप तो मैं तो उसका कल्याण हो जाए बीके मैट्रिमोनी वेबसाइट कोई अच्छा कुमार दे देना बाबा, बस शादी तो करानी है, पर वो तो करानी है क्योंकि संसार लोग क्या कहेंगे, ज्ञान में तो चलती है बेटी, परंतु शादी के लिए एक पावरफुल कुमार, ऐसा कोई पावरफुल कुमार हो तो देखो, कुमार मतलब ही पावरफुल कोई आपका कोई पावरफुल बच्चा होगा तो वो दे दो कहीं से भी ढूंढ के। और अशोक भाई क्या भक्ति करते हैं शिव बाबा की? मांगते हैं बाबा से शांति दो, प्रेम दो, पवित्रता दो, आनंद दो, योग में अच्छा अनुभव कराओ, हम अभी नीचे जा रहे, बारिश मत आने देना, ट्रेन छूटने, बस मेरे जाने तक ट्रेन को रोक के रखना। चलो वो एक प्रकार से योग भी है, चलो बाबा से ही जोड़ रहे हैं वो, फिर भी पर भक्ति है ये, फिर भी भक्ति है। दिल से कहो, चलो वो एक दूसरे प्रकार की है, प्यार वाली बातें और उससे रूरियान करना, संबंध जोड़ना, हर बात के लिए राय लेना, अविनाशी सर्जन बैठा हुआ है सब कुछ बताना, वो फिर भी एक अलग बात है, पर फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा भक्ति का अंश है।
नॉलेजफुल स्वरूप नहीं है
ये, नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप कुछ और ही स्टेज होती है, ज्ञान स्वरूप होगा इतना शक्तिशाली स्वरूप है वो कि उसमें ये सब चीजों की करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कुछ कुछ श्रेष्ठ भक्त है, जैसे वो मुरारी बापू है, वो क्या है किसी को कोई वो एक बार दवाई खा रहे थे तो कह रहे हैं कि अरे आप इतने बड़े कथाकार हो, राम कथा सुनाते हो और आप ये मेडिसिन वगैरह लेते हो, क्या आप राम को नहीं कह सकते, आप तो राम के परम भक्त हो, मतलब ये छोटी छोटी बातों के लिए मैं उसको क्यों डिस्टर्ब करूं जब मैं ये दवाई खा के ठीक हो सकता हूं तो उसको क्यों मैं परेशान करूं। वो बताई थी ना अर्जुन ढूंढ रहा है चार लोगों को वो तलवार लेके वो ब्राह्मण ढूंढ रहा है तो हम उसको क्यों परेशान करें, अरे भाई डॉक्टर बैठा है ले लो उससे दवाई और ठीक हो जाओ, अरे वो बीमार है और परंतु हे बाबा ठीक करेगा शिव बाबा बैठा है। ऐसे कई मरीज आते हैं 10 साल से कुछ कुछ बीमारियां है, अरे अब तक क्यों नहीं आए, बाबा बैठा है ना हाँ गोली लेना नहीं है, 300 और 400 शुगर चल रही है, बाबा ठीक करेगा, और इसे कॉम्प्लिकेशन होता है बाबा देख लेगा, एक ही निश्चय है बस हाँ।
डॉक्टर ठीक करेगा तो ही बोलेगा बाबा ने किया
तो ये एक इसी परिवार में एक कैटेगरी है भक्ति, शिव बाबा की भक्ति सूक्ष्म रूप से, उससे मांगते रहना, सेंटर के लिए जमीन चाहिए बाबा जमीन दिला दो, अच्छी बात है वो तो,
हमारे लिए
योग करना, ये तो एक दूसरे के लिए कहते हैं पर ये भी एक प्रकार से भक्ति है। वही वाली बात है, यहाँ शब्दों को पकड़ वो भी जरूरी है परंतु कैसे यूज करना, उसने एक ही चीज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, आप केवल एक ही बात को नहीं पकड़ सकते उसकी, उसने वो भी कहा है फिर वो भी कहा है वो भी कहा है, उसमें बाप क्या करे, ऐसा भी कितनी साकार मुरलियों में आया हुआ है, तुम्हारा तुम जानो मैं क्या करूँ, मेरे को ये मैं ये सब चीजें नहीं करता हूँ, मैं इसके लिए आया ही नहीं हूँ, मेरा काम केवल पतित से पावन, बाबा इतने लोग मारे गए उनकी आत्मा कहाँ गई, अब मैं क्या बताऊँ, बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ एक मुरली में, अरे बाबा बच्चे बाप से कहते हैं माया के वश हो गए बाबा बचाओ, तो बाबा ने एक मुरली में साकार महावाक्य है, जब आर्मी में कोई मरता है गोली लगती है तो मर जाता है, उसमें बाप क्या करता है, बाप थोड़ी ना उसको बचाता है, वहां थोड़ी ना बचाया जाता है, यहाँ थोड़ी ना तुमको बचाएगा कोई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी तो तस फल चाखा, कर्म प्रधान संसार है, कर्म करो और फल खुद भोगो, मैं भगवान इस कर्म फिलोसॉफी में इंटरफियर नहीं करता, हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करता है वो, जो जिसने किया है वो ऑटोमेटिक उसको फल मिलता है उसका, उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें, यहां तक भी वो डिटैच्ड है अनासक्त है इन सब बातों से। हाँ बाबा तो बाबा के पास बहुत सारे उत्तर है ऐसे तो, अगर हम बोले कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बचाया क्यों नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, हाँ तो बाबा ऐसे बोल देगा तो ये होगी फर्स्ट कैटेगरी। अभी सेकंड कैटेगरी पे आ जाओ, तो ये आत्माएं क्या करती है, एक तो है कि भोग विलास और दूसरा है सब कुछ छोड़ देते, एक सीधा और एक शीर्षासन, यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे, एक तो बिल्कुल डूबे हुए है खान पान और घूमना फिरना और वो सब में, और दूसरे है सब कुछ छोड़े हुए है, बिल्कुल सब छोड़ दो, कुछ है केवल तपस्वी मूर्त।
तुम्हारा खाना पीना भी है और घूमना फिरना भी, दोनों बैलेंस चाहिए।
वो वही इसके लिए बैलेंस कहा हुआ है ना। तो ये भी यहाँ पर जैसे वो धर्म वाली आत्मा है, अपना अपना शोकेस, उसमें एक शोपीस, भिन्न भिन्न थियरी। अब बाबा ने तो सब कुछ बता दिया है श्रीमद, पर उन्होंने अपनी अपनी थियरी निकाली है, उसका अपना इंटरप्रिटेशन कि ये ऐसा है। बाबा ने ये कहा है, ये वाक्य है बाबा के, और वो अपने रीति से सुविधाजनक श्रीमद, फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस। वो चलो एक वो एक दूसरा पॉइंट है वो कि हमने इतना त्याग किया, हम ऐसे किए तो हमको ये मिलना चाहिए। वैसे जो सन्यासी होता है उसकी जिम्मेवारी गृहस्थी से ज्यादा होती है एक रीति से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सन्यासी कमाता नहीं है, गृहस्थी कमाता है। इसके लिए उसका अगर वो पाप करता भी है, भूले होती भी है, परंतु जो संसार पर निर्भर है पुण्य, तो उससे अगर कुछ विकर्म होता है तो वो ज्यादा वहां बनता है हिसाब किताब, नीचे वाली आत्माओं का इतना नहीं बनता। तो यहाँ वाली आत्माओं का भी ज्यादा हिसाब किताब बनता है, अगर पुण्य बहुत ज्यादा है तो पाप भी बहुत ज्यादा है, हिसाब ऐसा है यहाँ पर। अगर वो कोई खाने को वेस्ट करते हैं गृहस्थी, खुद ही कमा रहे, खुद ही वेस्ट कर दिया, यहाँ कमा नहीं रहे पर वेस्ट कर रहे, चाय ली आधा ग्लास है रख दिया और चले, इसका भी हिसाब बनेगा इधर, चाहे चाय चाहे भोजन चाहे कोई भी चीज, पानी से लेके कुछ भी ले लो, इधर ज्यादा हिसाब बनेगा, क्योंकि जो सन्यासी है वो संसार पर निर्भर है अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए, वो गृहस्थी है वो खुद कमाता है वो भी, पर हिसाब इधर थोड़ा ज्यादा है। ये सूक्ष्म एक चीज है यहाँ पर। तो ये दूसरे प्रकार की है जो अलग अलग यहाँ पे मते है अपनी अपनी, श्रीमत तो मिल चुकी है ऐसा है, पर उसका अपने अपने रीति से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जिसमें मतलब वो श्रीमत वहां पर पूरा तोड़फोड़ कर दिया वो श्रीमत का, परंतु शब्द वही है बाबा के, पर अपने रीति से ले लेना। जैसे कोई आतंकवादी है वो भी उदाहरण देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से वही तो कहा था, मारो इनको, वही तो हम कर रहे हैं, मतलब अपने फायदे के लिए शास्त्रों की बातों को उठाना, बस उतना ही उठाना, वो ये नहीं बताएंगे कि और भी कुछ कहा है क्या, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, अपने काम की जो बात है वो शास्त्रों से उठाना और उसी का उदाहरण देके समझाना लोगों को। तो बाबा ने मुरलियों में बहुत सारी बातें कही है, इतनी सारी बातें कही है। बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें एकांतवासी बनना है, तुम्हें स्टडी करनी है। अभी पूरी मुरली पढ़ाई पर थी 18 जनवरी की, तो वो उसका अलग रीति से करेंगे, अरे ये मुरली विरली पढ़ के क्या होता है, एक बार सुन लिया बस हो गया ना, अभी क्या करना है ना, उसको थोड़ी ना ये सब करना पड़ता है, इतना टाइम वेस्ट, सेवा भी तो करनी है। तो ये इस तरह से अपने अपने इंटरप्रिटेशन। तो ये सेकेंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी वैज्ञानिक, वो आत्माएं हैं कि जो दिन रात सेवा में लगी हुई है, ज्ञान योग से कम लेना देना है, वो केवल इन्वेंशन करती रहती है नई, और दूसरों को फायदे में, दूसरे के लाभ होता है उनसे, वो भी अच्छी कैटेगरी है ये। जैसे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसकी वजह से कई लोगों को फायदा हो रहा है, पर वरंतु वो करते करते वो दिन रात उसी में लगे हुए हैं। अच्छा कोई मूवी बनाएगा, फिल्म बनाएगा, मीडिया बॉलीवुड स्टूडियो और या जो मूवी बनाने वाले हैं, पर वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि रात को सोने सोते सोते 2 बज जाते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, ना मुरली ना अमृत वेला, और दिन रात यही, और कई सालों से यही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तो सेवा है, बाबा की सेवा है, बाबा का कार्य है। मतलब ये क्या कर रहे हैं आत्माएं, ये उस जैसे उधर वैज्ञानिक है, दूसरों को सहयोग, मेहनत बहुत है, दिमाग भी बहुत है, त्याग भी बहुत है, और परंतु अपना दूसरों को दे रहे हैं, बाबा ने क्या गिफ्ट दे रहे हैं। वाले वैज्ञानिक बन गए होंगे अभी। तो इसी यज्ञ में ये तीसरी कैटेगरी की आत्मा है कि जो ये आईटी मीडिया और ये सारा इसमें मतलब कुछ खोज करने में लगे, मतलब मैं हम ये नहीं कह रहे कि वो ना करे, करे, परंतु वो करते करते ज्ञान और योग छोड़ दिया है। हाँ मतलब जो भी है वो करते हुए बैलेंस छूट गया है, और बस वो कर रहे हैं। जैसे किसी को कहा स्पार्क ले लो, उसमें इतना डूब गए कोई अगर हो सकता है कि वो यही छूट गया, या फिर सेवा में ही इतना ये हो गए कि वो ज्ञान और योग ही छूट गया। तो ये थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी है राजनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी। तो ये इसकी तो नींव द्वापर से जो यहीं पे डाली जाएगी राजनीति की। तो इसमें भी चाल, कभी पाव भरा तो कभी पालन घर अपने परिवार का भी पोषण नहीं कर सकते, तो कभी बेताज बादशाह तो कभी वोट के भिखारी। यहाँ जो मुख्य बात है वो नाम और मान के भिखारी, ये सबसे बड़ी माया है आज इस यज्ञ में, सबसे बड़ी माया। कि थोड़ा सा भी ऊपर चले गए तो नाम से जो बच सकता है बस वही सेफ है यहाँ, बाकी तो बस डूब ही जाते हैं। द डिजायर फॉर नेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। विवेकानंद ने कभी कहा है कि नाम की इच्छा जो है ना अध्यात्म में, ये सबसे मतलब वर्स्ट बैड, वर्स्ट सबसे बुरी चीज है। ये जिसमें उत्पन्न हो गई वो गया, फिर वो कुछ और ही होता है। ऊपर से रूप तो कुछ और है पर दिखावा होता है, उसमें बनावट आती है, फिर सब मतलब अंदर खतरनाक, सबसे खौफनाक व्यक्ति, सबसे खौफनाक व्यक्ति, अंदर एक बाहर एक।
अच्छा उसको तो एक चाल लगते है बाम्बू के ऊपर से, अच्छा लगता है।
हाँ
अंदर से तो पूरा ही ये
रहता है, अंदर से खाली रहता है बाम्बू। तो दिखावा बाहर से कुछ अंदर से कुछ, धीरे 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 खोखला होते जाता है व्यक्ति। नाम और मान की इच्छा है, फिर वो जो भी सेवाएं करता है वो सेवाओं के लिए नहीं है। वो नाम बाबा का है पर अंदर मैं बैठा हुआ है, नाम बाबा करा रहा है परंतु अंदर मैं, ये जो मैं चलता रहता है आवाज, बड़ी अच्छा लगता है, तारीफ सुनने को बहुत अच्छा लगता है। कान आतुर रहते कि कौन कब आके मेरे प्रशंसा में दो तीन शब्द कहे। नाम और शान की भूख, और ऐसी जगह जाएंगे नहीं जहां पर लोग हमारी तारीफ नहीं करें, जहां हमारी पता है कि जहां हमारी स्तुति होने वाली है वहीं जाएंगे, वहां जाना भी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही लोग चाटुकार आसपास तो ये भी एक माया। फिर पांचवे प्रकार की जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक चाहिए चाहिए वाले, तो इस यज्ञ में भी चाहिए चाहिए वाली जनरल पब्लिक है। तो ये पांच प्रकार की कैटेगरी जो बाबा ने संसार के लिए कही, वो इसी यज्ञ में भी इसी तरह की पांच कैटेगरी, तो इनको भी सकाश देना और उनको भी देना। इनके प्रति भी रहम दिल तो उनके प्रति भी रहम दिल, इनके प्रति कल्याण की दृष्टि तो उनके प्रति भी कल्याण की दृष्टि, इनको कणा दाना तो उनको भी कणा दाना। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस पांच में से ही हम कहीं है, हम जरूर कहीं ना कहीं है इसी पांच में, परंतु ऊंची स्थिति में चले जाओ, चाहे भले हम पांच में है पर ऊंची स्थिति में सबको देते रहो, अपने आप को भी दो तो छूट तो जाएंगे एक दिन। फिर दादी और फिर दीदी दादी सामने है, बाबा ने क्या, बाप दादा हर्षित होते हैं, किस लिए,
संस्कार मिलन
नहीं, संस्कार मिलन नहीं, उसके पहले क्यों हर्षित होते हैं, निमित्त आत्मा को देख कर क्यों हर्षित होते, तख्त वाली बात है कि सेवा के तख्त में, तो उधर भी बाप देते, यही परंपरा फिर सतयुग में भी चलती है, सेवा बाप समान बनाया, उसका रिस्पॉन्ड दिया, फिर दूसरी बात है रास की। तो यहाँ पर भी बाबा ने क्या कहा है कि बाप दादा को अच्छा लगता है, कोई कोई के संस्कार की टक्कर होती है तब भी अच्छा लगता है। उदाहरण दिया कौन सा, विदेशियों की बॉडी कैसी होती है, इलास्टिक बॉडी होती है, कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होता है, अगर संस्कार टक्कर होती है तो सबसे पहले तो टाइट होते हैं, फिर लूज, थोड़ा लूज, फिर लूज, फिर उसके बाद में मिलन, और उसके बाद में नाच, नाच खुशी से नाचते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, यहाँ पर संस्कार मिलन, दो लोग, दो आत्माओं का टकराव हुआ है, दोनों टाइट है, वो कहता है मैं राइट हूँ, वो कहता है मैं राइट हूँ, वो कहते हैं मैं बात नहीं करूंगा, पहले मानो कि तुम रॉन्ग हो तब बात करेंगे, तब तक कोई नहीं, मैं राइट हूँ,
एक मान जाता है।
फिर एक अगर माने तो ड्रेस पहले टाइट था, फिर थोड़ा सा अच्छा, एक ने माना अच्छा चलो वो भी मानेगा, फिर और ज्यादा लूज, फिर मिलन, और फिर रास दोस्ती, ये ऐसी स्टेप से धीरे धीरे। तो पहले टाइट तो लूज हमको करना पड़ेगा, बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया, जैसे वो लोग रास मिलाते हैं तो उसमें मिलन होता है, तो तुम रास करते हो तो भी मिलन होता है, फिर इधर कोई भी कार्य में रास मिलाते हैं ना सर, तो वो एक उदाहरण यहाँ दिया है। फिर बाबा ने यहाँ से बाबा के पास रेडियो टीवी सारे साधन उधर है, ऑटोमेटिक है, जो संकल्प की ओर इमर्ज हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स, साइंस भी सूक्ष्म होता जा रहा है, पावरफुल और अति सूक्ष्म हो रहा है। फिर वो बिंदी की बात कही, बिंदी में बिंदी भी है तो जितना विस्तार करो उतना भी विस्तार उसका कर सकते हो। फिर बाप दादा बच्चों की भूले नहीं देखते पर क्या करते हैं, भले भले को देखते हैं। फिर ठोकर और ठाकुर की बात कही है। संगम युग की एक विशेषता वो ये कि बाप दादा यहाँ देखते रहते हैं। वहाँ एक पॉइंट और रह गया है कि संगम युग में बाप दादा क्या क्या देखते हैं, संकल्प, बोल, कर्म और संपर्क। इतना क्लियर, आपसे भी ज्यादा क्लियर वो दिखते हैं, स्पष्ट है इतना। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि बाबा हर बात हमारी, बाबा के पास रेडियो टीवी से हो गया, पर ये जो बात है कि बाबा सब कुछ देख रहा है। इसमें जो मुख्य और एक बात है, संपर्क, हमारा आत्माओं से जो संपर्क है वो भी बाबा को क्लियर पता है। मतलब अगर बाबा कहे कि ये क्या है तुम्हारा, हम अगर एक्सप्लेनेशन दे उससे भी ज्यादा क्लियर उसके पास है। हम कहे कि भाई मेरा तो ऐसा कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, सब ठीक ही है, बाबा जानता है तुम्हारा क्या है। हम कितना भी कहे क्यों भाई तुम वो आया तो तुमने उधर मुंह कर दिया, अरे कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही। बाबा तुम्हारे अंदर के संकल्पों का टीवी दिखाएगा ये देखो, क्योंकि बाबा के पास हमारे संपर्क भी स्पष्ट है,
कैमरे की निगरानी,
निगरानी में है। हाँ तुमने उससे बात की थी, अरे कहाँ है वो तो है ही नहीं हमारे मोबाइल में, डिलीट। बाबा के मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है। यहाँ डिलीट कर दो तुम, उधर है। तो ये एक बात यहाँ थी। फिर पार्टियों से, टीचर से, नंबर वन टीचर, सब सेवा केंद्र, एक अनेक सेवा केंद्र संभाले। जैसे उदाहरण दिया एक स्टेट में, वो बिंदु दिखाते हैं नक्शे में, वैसे तुम कहाँ तक पहुँचे हो सेवा में। फिर उसमें ये करो, प्लान बनाओ, विशेष प्लान बनाओ और ही ज्यादा सेवा करो, बढ़ाओ थोड़ा। फिर भारत की सेवा और विदेश की सेवा का वर्णन, यहाँ पे मेहनत है, क्यों?
क्योंकि
सुना हुआ उधर सफाई हुआ है, इधर नहीं हुआ। भारत में पहले से इतना कुछ भरा हुआ है बुद्धि में, बचपन से सुनाया हुआ है हमको, ये अवतार इसका, ये कौन, ये उसका अवतार, वो उसका अवतार, ये इसका अवतार, वो उसका अवतार, ये कौन से बाबा है, ये उसके बाबा है। और ये इतने सारी चीजें बताई है बचपन से, रामायण सुनाया गया है हमको, महाभारत सुनाया गया है, पूरा बुद्धि में भरा हुआ है। कैसे कोई मानेगा कि ये सब भगवान नहीं है?
एक ही घर में
अलग अलग की भक्ति करने वाले, कोई इसके पास जाता है, कोई उसके पास जाता है, कोई यहाँ जाता है, कोई वहाँ जाता है, एक ही घर में,
एक ही घर दूसरे को मिलेगा।
हाँ। तो ये इतना भिन्न भिन्न है सब, तो ये सब गड़बड़ इधर है। इससे तो वो नास्तिक लोग बहुत जल्दी ज्ञान में आ जाते हैं,
नास्तिक यहाँ भी एक भाई अगरबत्ती लगाता है और दूसरा उस अगरबत्ती को उठा के बांध के अपनी अगरबत्ती लगाने का।
सारे संस्कार यही भरने हैं भक्ति के भी। तो यहाँ की एक तो ये बात, इसके लिए सेवा यहाँ पर इजी है, वहाँ इजी है, यहाँ मेहनत है, वहाँ सहज है, वहाँ मेहनत नहीं है, एक तो ये बात। और दूसरी बात जो तीन हफ्तों से चली आ रही है, सुख के साधन थक गए हैं, पिछली मुरली में भी था, थक गए हैं, लेटते हैं तो गुम हो जाते हैं, डीप स्लीप, पेट भरा हुआ है और नष्ट मोह हो चुके हैं सारे, पहले ही सारे ये सब जो आया है दो तीन मुरलियों में, वही बात यहाँ बाबा ने रिपीट किया। यहाँ तो शुरुआत हुई है, यहाँ तो इच्छा है, कुछ अगर चाहिए नहीं मिला तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, और उनका तो पहले से किनारा हो गया हुआ है, और फिर इधर सहारा मिल गया बाप का, और लोक मर्यादा पहले से ही छूटी हुई है, तो वहाँ नष्ट मोह भी स्वतः हो जाते हैं, यहाँ मुश्किल होता है भारतीयों को। तो ये सारी विदेशियों के लिए बाबा ने बात, पर उधर भी सेवा करना कोई इतना आसान भी नहीं है, उधर भी अपनी एक अपनी अपने प्रकार की समस्या है। तो ये यहाँ पूरा किया, उसके बाद में फिर पार्टियों से मुलाकात। उस संसार में जैसे कोई घर से बाहर जाता है तो
अच्छा नहीं मानते,
खुशी नहीं होती,
खुशी नहीं होती,
और यहाँ
खुशी होती,
बाप दादा को खुशी होती है, क्यों?
और लेने के लिए जा रहे हैं,
और लेके आएंगे, एक एक जाएगा, सबूत बच्चा वो है जो सबूत देगा। तो यहाँ से जाएंगे और लेके एक जाएंगे और कईयों को, अनेकों को इधर लेके आएंगे। और कौन सी बात कही यहाँ पर? फिर वो लंदन की सेवाओं के लिए थोड़ा कहा है कि सेवा का विस्तार करो, यहाँ से सारे निकलने चाहिए, कितने सेंटर खाली पड़े हुए हैं, वो एक दो बातें यहाँ है। और फिर लास्ट में फिर से है अमृत वेला के ऊपर, अमृत वेला क्या करो, भिन्न भिन्न वैरायटी अनुभव करो, जिससे अनुभव बढ़ेगा। एक ही प्रकार का योग नहीं करते रहना है। जो एक बार जो कमेंट्री सुनी थी, मैं आत्मा हूँ, वही अभी तक चालू है। कान में क्या सुन रहे वही सुन रहे, जो 10 साल पहले जब कोर्स हुआ था जब सुनी थी ना, वही कमेंट्री अब तक चालू है। और उसी प्रकार हर दिन की कमेंट्री, नया दिन नया उमंग नया उत्साह होना चाहिए।
पेपर तो वही आना ना, आत्मा का
वो तो है, पर ये सारा आत्मा की उसी पेपर को पक्का करने के लिए कई सारे साधन है, और ये सारों के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तब बाबा ने कहा अनुभव बढ़ेगा, नहीं तो आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, वही वही नहीं, हर दिन नया नया, हर दिन एक एक समान का अभ्यास। उसके लिए समान को ढूंढना पड़ेगा, समान को लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि आज ये समान लिया जाए। एक ही दिन में भिन्न भिन्न समान, एक एक हर एक कर्म के साथ भिन्न भिन्न समान, ये कर्म कर रहे तो ये समान, वो कर्म कर रहे तो ये समान, ऐसे अलग अलग समान, हर एक स्थान के लिए अलग अलग समान। हम जिन जिन स्थान पर जाते हैं संजय भाई, उसी स्थान पर एक एक समान वहां पर
पहले
से रख देना है। ये स्थान के लिए ये समान, अच्छा यहाँ से वहां जा रहे हैं, ये जाते समय क्या करूं, स्थान रास्ते में ये चीजें आती है, जाते समय ये अभ्यास करेंगे, सकाश ये जो भी है। यहाँ से रोज जिस किसको नीचे जाना है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कोई ब्रेड में है तो कोई लॉन्ड्री में है तो कोई जो जो डिपार्टमेंट में है, वो अपने अपने रीति से सामान लेने हैं सारे, अपने अपने कार्य के साथ, एक एक कार्य के साथ, छोटे छोटे कार्य के साथ। ये सारी बातें सबको पता है, परंतु प्रैक्टिकल में थोड़ा कम हो जाता है, बस करने की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ज्ञान को ज्ञानियों को सुनाया जाए, अभी सब कुछ पता है। तो ये यहाँ पर ये बात पूरी है, और वरदान मर्जीवा, तो आशीष भाई मर्जीवा के लिए क्या कहा बाबा ने,
पुराना सब खत्म हो गया,
पुराना सारा खत्म, आकर्षण खत्म, कर्मेंद्रियों की आकर्षण खत्म, नया जन्म, और ये ब्रह्मा कुमार बन गए तो वो तो आ ही नहीं सकता है, उसकी तो जैसे अविद्या, ज्ञान भी नहीं है कि आकर्षण होता है। और लास्ट लाइन एक अच्छी लाइन है वरदान की,
अभी देख लेते हैं।
हाँ, कोई कहीं पर भी संस्कार या श्वास अटका हुआ ना हो,
शूद्रपन का जरा भी
श्वास, शूद्रपन का जरा भी श्वास, संस्कार कहीं पर भी अटका हुआ नहीं, ये मर जीवा बनना है, बहुत बड़ी बात है। नवीन जन्म हुआ है ये बार बार अनुभव कि हमारा ये नया जन्म है, ये पुराना जन्म नहीं है,
पुरानी आयु समाप्त हुई,
पुरानी आयु समाप्त हो चुकी है, पुराना जीवन समाप्त हुआ, ये जो जीवन है उसमें उसका इधर से उधर का इधर नहीं आना चाहिए। ये अपने आप को बार बार याद दिलाना कि ये मेरा नया जन्म है, कोई भी शूद्रपने का संस्कार उधर का जो था इधर नहीं आना चाहिए। मराठी में एक संत है तुकाराम, उन्होंने लिखा है एक जगह, मदची मीत व्यालो आपुली या पोटियालो, मैं ही मेरे द्वारा ही मेरा जन्म हुआ, मेरे ही पेट से मेरा जन्म हुआ है। मदची मीत व्यालो माना डिलीवरी जो हुई है मेरी अपने ही पेट से हुई है, आपुली या पोटियालो। मैं जब आध्यात्मिक क्रांति घटित हुई जीवन में, पहले तो संसारी जैसे गृहस्थी है, फिर जैसे ही भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो उसने ये लिखा कि मेरा जैसे नया जन्म है ये, अब वो जन्म नहीं रहा, अब ये नया जन्म है, ये जन्म उसके लिए है। पोटली नहीं, पेट की बात है। पोट को पेट कहते हैं। अमृत वेले क्या कर दो स्वयं को, पर बाप के स्नेह से कितना भर दो,
कोई आकर्षित नहीं
समा दो, तो
कोई भी आकर्षण,
कोई भी आकर्षण, किसी का भी स्नेह, किसी का भी प्यार खींच ना पाए। सारे अमृत वेले अपने आप को प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार खींच ना सके, कोई भी कर्मेंद्रिया खींच ना सके, देहधारी का प्यार खींच ना सके, किसी
का
इतना स्वयं को उससे भर दो। तो मुरली का सार में विश्व की बहुत ऊंची स्टेज पर स्थित होना और विश्व की सभी आत्माओं को सकाश देना, एक एक आत्माओं को इमर्ज करना, सकाश देना, चक्र लगाना, परिभ्रमण परिक्रमा करना विश्व की। और यहाँ जो बात है कि बाबा को सब, ये संगम युग की विशेषता है कि बाप हमें देख रहा है। तो जैसे बहन ने कहा था ना, एक प्रोजेक्ट जो चलाया था, बाबा इज वॉचिंग अस, मलेशिया कौन सी बहन थी, मॉरिशस की, तो बाबा इज वॉचिंग अस कि बाबा हमें देख रहा है, ये बात हमेशा याद रखना है। फिर संस्कार मिलन की रास करना है, टाइट लूज, ज्यादा लूज, और मिलन और फिर नाच, खुशी का नाच, ये स्टेप्स है संस्कार मिलन की। उसके बाद में आगे नंबर वन टीचर जो अनेक अनेक संभाले या चक्र लगाने वाली, वो है नंबर वन टीचर। और लास्ट में ये अमृत वेले की बात। तो ये सारी मुख्य मुख्य बातें इस मुरली से है। और किसी को कुछ कहना है, कोई पॉइंट? अरे हाँ, ये तो भूल ही गया, जैसे मोदी जी का एक दिन का अगर देखो कितना चक्र लगाते हैं। मैं सोच रहा था कौन सी पॉइंट भूली। हाँ, टीचर्स में ही तो आप भी एक ही दिन में कितना चक्र लगाना चाहिए, जब लौकिक प्राइम मिनिस्टर एक ही दिन में इतना चक्र लगाते हैं। अच्छा, और अशोक भाई कुछ रहा है? सारा हो गया?